करुणार्दिन्ध दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपालकान्त
राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकुभरगदगदयाद्यवाचा जाति निपत्तभुवि दण्डवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनं विधे। अङ्गश्यामलिं क्षताभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवनम् जद्दञ्जागुडरोच संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दामो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना धेनुमस्ते गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्रपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमामचरणन्तिके वदामि राधां करुणाभरद्रं भजामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नः। हम लोग वृंदावन में रहते समय में भरमत गीत के संबंध में कुछ बतला रहे थे। उसमें निग्रीव कपिंद्रम विदधे लुप्त धर्मा स्तेम अकृतदेवोपा स्त्री जीत कामयानम बलिमपि बलिमत्वा वैश्यभ्यांशवसज सदलमसि सख्य दुष्पजत सत्कथा। इसमें हम लोग बतला रहे हैं। इसमें ये अवजल्प राधा जी का चित्र जल्प का और जल्प बतला रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, इसकी व्याख्या हमने की कि मृग रीव कपिंद्रम दिग्गधे लुप्त धर्मा कर रही है। श्याम से हमारा कोई भी संबंध नहीं, श्याम रंग से काले रंग से जितने श्याम रंग हैं उनको सतयुग त्रेता और द्वापर तीनों का भी लिया और बतलाया। इससे ये मालूम होता है कि राधा जी को ये किस प्रकार से पता है कि यही कृष्ण ही त्रेता युग में राम थे और सतयुग में वामन जी थे। ऐसे ही इसमें लगता है, इसलिए श्याम रंग पर कटाक्ष करते हुए कह रही हैं, देखो त्रेता युग में एक व्यक्ति था श्याम, जिस मृगा को कोई नहीं मारते हैं, ऐसा निष्ठुर निर्दय कठोर हृदय का उसने कपि इंद्र बालिका वध किया, लुब्ध धर्मा, लुब्ध माने जो शिकार खेलने वाले हैं बहेलिए जो है वो लोग भी नहीं मारते इनको बंदरों को, किंतु मृगयु रीव मृगया की भांति शिकार खेलने की भांति बहेलिए की भांति परम निष्ठुर होकर के उसको मारा। बहेलिया गरीब आदमी होता है, दरिद्र, पेट के जीविका के लिए खाने के लिए या उसका मांस बेचने के लिए वो ऐसा कर सकता है। इनको जरूरत थी कि नहीं बेचने की, ये तो राजा धीराज है, इनको बेचने की जरूरत नहीं है, फिर उसको क्यों मारा? विशेष करके बंदरों का मांस नहीं कोई खाता, तभी उन्होंने ऐसे मारा। इतना निष्ठुर, वो भी छल कपट से मारा, पेड़ की आड़ से मारा। लुप्त धर्मा, धर्म को भूल गए, अधार्मिक जैसा, उसका दूसरा भी अधार्मिक जैसा। स्त्रियम कृत विरूपा स्त्रीजीत कामयान, स्त्रियम कृत विरूपा, स्त्री को जो उनके रूप को देख करके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई, जो कि जिनके संबंध में ऐसा लिखा गया है कि इनसे जो कोई कामना करेगा उस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वंशा कल तरुण, जैसे भी कोई कामना की उस कामना को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है। कामना पूर्ण तो दूर रहा, स्त्री जीत होकर, स्त्री जीत माने स्त्रियों को जीत लिया है ऐसा नहीं, द्वारा जो जीत लिए स्त्रियों के द्वारा, ये समाज पूर्व प्रधान स्त्रियों के द्वारा जीता हुआ उसके वशीभूत होकर के और एक स्त्री का नाक कान काट लिया विरूपा। किस लिए? कि कहीं इसकी फिर से कोई भी व्यक्ति इसको प्यार न करे, इतना निष्ठुर भविष्य देख करके उसका आगा पीछा सब सर्वस्व नष्ट कर दिया। कामयानम, कामयानम क्या? संस्कृत में कामा की थी, काम एव ज्ञानम प्राप्ति साधनम जस्या तां स्त्रीय। सूर्पनखा के लिए बता रहे, उसने काम किया, कामना की हमारे ये पति हैं, इसलिए उनके पास में काम में अंधी होकर के गई और उसको उन्होंने नाक कान कटवा लिए। क्यों किया? अधार्मिक जैसा काम, निष्ठुरता जैसा काम, उसका भविष्य भी नष्ट कर दिया। जो कोई भी हमको इसको कोई ग्रहण न करे, स्त्री जाति काम यानम। और एक और भी काला व्यक्ति, श्यामल व्यक्ति, वो हुआ बलि बामन, और उन्होंने बलिमत्वा बलिम अत्वा खाकर उसका सर्वस्व ग्रहण कर सर्वस्व ले लिया, ले करके आवेश्य उनको बांध करके गिरा दिया नाक पास से, गिरा करके, और वो बेचारा रोने लगा। वो तो ब्रह्मा जी आए उनको छुड़ा दिया, और बलि प्रहलाद महाराज ऐसा निष्ठुर व्यक्ति, जैसे कौवे ठुकराते हैं खा करके, काव काव करके अपने पूरे समाज को बुला लेते हैं और सभी मिल करके वो स्त्री यदि जाती है उन लेकर के कोई ठाकुर भोग की चीज तो उसको ले भी लेते हैं और ठुकराते हैं, ऐसे इसका सर्वस्व हरण करके और ऐसा कर दिया, उसको बांध करके रख दिया। इसमें एक ये भाव आता है कि इन्होंने, इनको पता है कि यही राम थे और यही तो फिर मधुर भाव कैसे होगा, इसके लिए कुछ बतला रहे हैं। ये दिव्य उन्माद है, ऐश्वर्य को ऐसा लिया गया है, ब्रज में ऐश्वर्य भाव तिरोहित होता है, रहता है तिरोहित रहता है, आच्छादित रहता है। गोवर्धन भी धारण किया और भी जो ऐश्वर्य युक्त कार्य है उनको किया, किंतु माधुर्य द्वारा उसकी अभिव्यक्ति छिपी रहती है, वो दिखलाई नहीं पड़ती। उन्होंने, नारायण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, किंतु ऐश्वर्य न रहे केवल माधुर्य रहे, ऐसा होने से ये संसारिक बातें हो जाए। इसलिए भगवान में ऐश्वर्य रहेगा, यदि न रहे तो फिर भगवत्ता ही नहीं रही, तो फिर लौकिक बातें रह गई। इसलिए ऐश्वर्य है किंतु माधुर्य के द्वारा अच्छा दिख रहेगा। अब यहाँ किस रूप में, मिलन में संयोग में उसका भाव नहीं रहा, क्या होगा, मिलन में नहीं रहेगा, संयोग में नहीं रहता, वियोग में कभी कभी वो आ जाता है, ऐश्वर्य का भाव, ये भगवत्ता का भाव संयोग में तो कभी नहीं रहेगा, भूल जाएगा, उसके पर एकदम थका रहेगा। वियोग में कभी कभी आए, जैसे 10 मन दूध हो और एक बड़ी कड़ाही में उसे उबाल रहे हैं, गर्मी खूब दी जा रही है, आग जलाई जा रही है, गर्म होते होते जबकि वो टकबक करके फूटने लगेगा तो नीचे का ऊपर आता है, ऊपर का नीचे जाता है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा सूखा कोई तीन का उसमें पड़ जाए तो वो सब समय नहीं दिखाई पड़ता, उसको पकड़ने के लिए जाऊं मैं तो क्या होगा, क्यों जगह तो नीचे चला जाए, और वो बहुत देर के बाद में घूमता 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 है तब फिर ऊपर आएगा, और जब ही उसको फिर निकालो, चम्मच लगाओ या कुछ भी लगाओ, कलछी लगाओ, वो फिर दिखेगा, थोड़ी देर के लिए दिखता है। तो उसी तरह से वियोग में, विप्रलम्ब भाव में ये कभी कभी भाव आता है, स्मरण होता है, किंतु फिर थोड़े समय के लिए ये चला जाता है। किस रूप में आता है, व्यभिचारी के रूप में, ने? एक होता है स्थायी भाव, एक विभाव, अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी, तो ये कभी कभी अनुभाव या व्यभिचारी भाव के रूप में कभी कभी अनुभूत होता है, अत्यंत कष्ट में, दुख में, विरह में, और फिर थोड़ी देर के बाद में ये लुप्त हो जाता है। श्रीमती राधिका जी को ऐसे ही हो रहा है। कहां से पता लगा इनको ये भगवान है, पौर्णमासी, नंदीमुखी और गर्गाचार्य, इन लोगों के बातों से इनको कभी सुना था किंतु मिलन के समय में भूल जाती है, अब विरह के समय में, पहले कृष्ण की बातें हम सब अब भूल जाएं, जब वो भूल गए तो हम भी भूल जाएं। जैसे हम लोग आंधी के समय में मन को एकाग्र करने के लिए सब चिंताओं को छोड़ते हैं, उसमें बारीक बारीक चीजें सब प्रवेश कर जाए बिना बुलाए, ऐसे बिना बुलाए, बिना आहूत किए हुए, बिना निमंत्रण के, वो सब चीजें विरह में, वो कभी कभी भगवत्ता का भाव जो सुना है कहीं से वो आ जाता है। इसलिए आप ही श्याम थे, और दूसरी बात इसको इस रूप में कहा जाएगा, इसमें तो मूल में तो है नहीं, इसलिए इसको इस रूप में ले लेंगे, किसी ने कहा नहीं श्याम को देख रही है, रंग को, और इस रंग में जहां तक कौआ तो को भी ले लिया, काला होता है। कौवा जैसे ठुकराता है वैसे बामन जी ने ठुकराया, ऐसे ही रामचंद्र जी का और ऐसे ही इन कृष्ण का। ये काले रंग का दोष है, उनका कोई दोष नहीं, इसमें भगवत्ता का कोई भाव नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ये भगवत्ता का भाव है, इससे भगवत्ता का भाव नहीं भी आया। और यदि कहते हैं तो उसके उस रूप में ले लें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी रूप में कहते हैं, पौर्णमासी जी नंदी मुखी और गर्भजाति के द्वारा, तो उस कष्ट के समय में थोड़ा सा याद आया। तो विद्रोहनाथ तरंग के आघात में श्रीमती राधिका जी की सबल ये उक्तियां हैं। क्या राधिका जी नहीं जानती हैं कि कृष्ण का हृदय अत्यंत कोमल है? जानती हैं कि नहीं? बड़े उदार हैं, जानती नहीं है? क्योंकि वो कभी कभी कहती हैं असली स्वापादरता। कृष्ण को बहुत परम उदार, परम दयालु, सब सद्गुणों से घोषित उनको जानती है। इसलिए वो जानते हैं जैसे कृष्ण बड़े स्नेहशील हैं। अब इसको सूर्पनखा के बात में जो कहा, ये दिव्योन्माद का यही लक्षण है, गुणों को दोष बना दो, उदारता को उसके कष्टों का कारण बतला दो। उनके जितने अच्छे अच्छे गुणों हैं सबको में ये लगाएंगे, ये गुण नहीं है ये बल्कि। इसलिए कृष्ण की उदारता, कृष्ण का स्नेह, कृष्ण का प्यार, ये सबको दोष बता दो। अर्थात गुणों में दोष को बताना, ये उसमें कृष्ण के जितने गुण हैं उनको ये दोष रूप ले, ये दिव्योन्माद। वस्तुतः सूर्पनखा का पहले तो मृगयूरिव कपिंद्रम दिव्यधे दिव्यधर्मा, अधार्मिक जैसा कार्य किया रामचंद्र जी ने, बाली को मारा, बिना कारण मारा। बाली ने उनसे मरते समय में कहा, जब ये गए तो कहा, जैसे आप तो परम धार्मिक का बाना पताका उड़ा रहे हैं, धार्मिक है भी, हमें क्यों मारा? रामचंद्र जी चुप रहे, सुनते रहे। बतलाइए, आप घर से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए ना, जाके वचन से बन गए, हमको क्यों मारा? उस समय में उनकी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कहा छिप करके क्यों मारा, यदि मारने तो सामने क्यों नहीं मारे? और स्त्री की लड़ाई थी, आप अपनी स्त्री को लेना चाहते थे, हमसे कह देते हम रावण से मंगवा देते, आपने ऐसा क्यों किया? एक पक्ष के लिए पक्षपात क्यों किया? हमने आपका तो अनिष्ट नहीं किया। तो उन्होंने युक्ति दी, देखो ये मेरा राज्य है, मेरे राज्य में कोई अन्याय करता है तो मैं दंड दे सकता हूं। उनका राज्य कुशल था ना, किष्किंधा था, किनके राज्य में था? यदि भगवत्ता के दृष्टि से कहे तो वो बात ठीक है, विश्व ब्रह्मांड उनका ही राज्य, किंतु वहां पर भी कुछ चलाकी खेल रहे हैं। क्या है वो? अनुज बधू भगनी सुकनारी, इन्हें बिलो कहीं, क्या है पंडित जी? अरे पंडित जी बतलाइए, क्या समाचारी? इन्हें बिलो कहीं, इनको यदि बुरी दृष्टि से कोई देखता है तो उसको मैं शासन करता हूँ। तो ये तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी, ये तुम्हारी कन्या है, ऐसा क्यों तुमने किया? अधर्म तुमने काम किया। यदि बलि जीवित रहता तो फिर वो भी पूछ लेता, विभीषण ने रावण की, वो तो मैया लगेगी ना, मंदोदरी मैया लगती है, तो मैया को क्यों उन्होंने रख लिया? बड़े भाई की स्त्री मैया हो, तो उस समय कुछ और चलाकी करते, ये सब सोच रहे हैं। राम ने बहुत से इसके उत्तर दिए हैं, अंत में उसने अपनी गलती को समझा। विशेष करके मैं अभिमानी हूं, यही बात है, हमने इनको नहीं कुछ समझा। मना करने पर भी उनकी पत्नी तारा मना कर रही है, ये भगवान है, इनसे मत लड़ो, तो भी अभिमानी है, नहीं इनकी बात माना। अभिमान किसी का नहीं रखते, और मारा भी तो इसको सुगति दे दी, मुक्ति अनायासी दे दी। इसलिए राम का कोई दोष नहीं है, तो भी दोष में ही, गुण में ही दोष खोज रही है। दूसरी भी बात है, शूर्पणखा है, शूर्पणखा उनके पास में आई मोहित होकर के। जिस समय आई और उनका मतलब जान लिया, तो भी उसको कह दिया जी ठीक है, तो उनको मैंने ग्रहण कर दिया। किंतु जिस रूप में जगत के लोग ग्रहण करते हैं, उस रूप में नहीं, मैं तुमको शुद्ध करके तब फिर ग्रहण कर लूंगा आत्मा को, ये जड़ शरीर से कोई तात्पर्य नहीं। इसलिए उन्होंने उस समय तो नाक कान काट लिया जी, और किसी के प्रति न ये झुके, ऐसा सर्वत्र ही रीति है। यदि इंद्रिया वशीभूत नहीं है, हरिदास ठाकुर जैसी कोई भी स्त्री है, कोई पुरुष है, अपना मन अपने वशीभूत नहीं होता है। थोड़ा सा कोई हवा मिल जाए ऐसी, कोई स्त्री याचना करे तो पुरुष, पुरुष याचना करे तो स्त्री, दूसरों के वशीभूत हो जाते हैं। उस समय अपने को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। विश्वामित्र के लिए, नारद जी के लिए और सब लोगों के लिए देखा जाता है ऐसा। इसलिए देखा उन्होंने स्त्री जाति है, यदि किसी पुरुष ने इसको प्यार किया जैसा कि हमको इसने किया, और ऐसा ही सुंदर वेश बना करके जाए, किसी रूप को देकर के लुक जाए, तो वो इसको प्यार करेगा, तो फिर अब तो इसको मैंने ग्रहण कर दिया, अब हमारी ग्रहण की ही चीज अब कहीं नहीं बिगड़े, इसलिए उसका नाक कान उस समय के लिए काट लिया। और दूसरी बार इसका जब जन्म हुआ कुजा के रूप में, तो 16 वर्ष तक उसको कुबड़ी बनाए रखा। उसका ये सुंदर बहुत मुखारविंद बहुत सुंदर था, बहुत अद्भुत, किंतु वो कुबड़ी आठों अंग से कुबड़ी, इधर निकला हुआ, इधर निकला हुआ, ऐसा वो कंस के दरबार में जाती, उसका मुखारविंद देख करके वो उसकी सेवा को लेता था, किंतु कुबड़ी थी, इसलिए किसी की दृष्टि उस पर नहीं गई। और इसी की भी कुबड़ी होने से वो लालच न कर सकी कि हमको कोई ऐसा कोई, जानती थी ये असंभव, इसलिए इस जन्म में भी उसकी रक्षा की। क्यों, किंतु जो ही कृष्ण का स्पर्श हुआ हाथों का, परम सुंदरी हो गई, कृष्ण को जब चाहे ये ठीक है एक दिन आऊंगा, किंतु उसका प्रेम जैसा था कैसा, साधारण। कृष्ण ने ग्रहण किया किंतु साधारणी के रूप में ही ग्रहण किया। उसकी सारी जितनी थी कामनाएं वासनाएं सदा के लिए उसको दूर कर दिया, और फिर उन्होंने मन से उसको ग्रहण कर लिया। किसी की कामना पूर्ण नहीं रहते, वो राम भी बैठे हैं ये भी एक ही, इसलिए उसकी पूर्ण कामना है, उसकी आत्मा को आत्मसात कर लिया। इसलिए यहाँ पर भी करुणा ही है। और बलि महाराज जी को जो ठगा उन्होंने, इनमें भी उनकी करुणा है। क्या करुणा, क्या करुणा, ठगा उनको, किंतु किसके लिए ठगा, उनके लिए ठगा, इसका करुणा, इसका कल्याण हो। इसलिए उनको तीन पग भूमि की जरूरत है मांगने की, भूमि तो उनकी है, यह मांगने की क्या जरूरत है, किंतु अपने भिखारी बने उसके कल्याण के लिए। किस लिए, प्रहलाद महाराज जी के नाते, इसलिए उन पर करुणा करना था, किंतु उनको सुधार भी करना था, इसलिए तीन पग से उनको मांगा, और मांग करके विराट शरीर आरंभ हो गया, और एक में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, दूसरी में कल इसे 14 भुवनों को नापा और तीसरी में काजी जगह दीजिए। तो उन्होंने अपने को ही दे दिया और काजी हमारे मस्तक को ले लीजिए माफी, मैं संपूर्ण उससे आपका हो जा। तीन ले लिए, तो अभी कुछ बाकी था इसलिए उनको प्रहलाद महाराज जी का संग दे करके सुतल का राज्य दे कर और प्रतीक्षा करें। इस तरह से उनकी कृपा ही सर पर तभी ये गुणों में ही दोष देख रही है। सुपर्णखा के लिए करें सरलता से हो या कपटता से कोई चाहे कोई चीज भगवान के पास में मांगा तो देंगे कि नहीं, कपटता से हो सरलता से हो जैसे भी हो कोई चाह लिया जरूर देंगे, यही तो वंशा कल्प स्वरूप है। इसलिए स्वामी भाव से उसने चाहा या आप हमारे पति, ये तो चाहा ना कपटता से चाहा या जिस काम के लिए चाहा चाहा ये ठीक है, उसका दोष दूर करके उसको उसी रूप में उन्होंने ग्रहण किया। किंतु दो जन्मों में उसकी प्रतीक्षा करके दूसरा कोई ना चाहे इसलिए उन्होंने करुणा करके ऐसा चाहा। एक बात है ये बतला रहा था मैं, पूर्व लीला में राम और वामन थे और उसको उन्होंने जाने वो कह रही, वो पहले बतलाया जैसे वो तीनों के तीनों की बात सुनिए, गर्गाचार्य पूर्णमासी और वो आनंद में उल्लास में ईश्वरत्व का बोध नहीं रहता। जहाँ आनंद मिलन में है उसको तो मिलन में ऐसा हो जाएगा जो वो क्या कहते हैं उसके अधीन है सब समय, स्वाधीन भत्रिका के रूप में। उस समय में उनको क्या जो भगवत्ता की अनुसंधान की क्या जरूरत है, इसलिए संपूर्ण रूप से वो भूल जाते हैं मिलन में। विरह काल में जैसा कि मैंने कहा बहुत विराट दूध के उसमें जब औंटने पर नीचे ऊपर जाता है तो कभी कभी वो दिखता है, इसलिए वो किंतु स्थायी भाव नहीं है। क्या है बतलाया उसको, व्यभिचारी इत्यादि भाव पर एक ईश्वरत्व का भाव आ जाता है, जैसे उसी में एक आ जाता है लीला अर्थात मैं ही कृष्ण हूं, ये भी अनुभव है उसका व्यभिचारी भाव। इसलिए उन्होंने कहा बतलाया ना, नखलु गोपिका नंदनोपमान अखिल देहिनाम अंतरात्म दे। इसके दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो साधारण में नखलु गोपिका नंदनो, आप निश्चित में ही यशोदा के ही नंदन नहीं है, अखिल देहिनाम अंतरात्म दे अखिल देही होते हैं। दूसरा अर्थ होगा ओ आप निश्चित रूप में गोपिका के ही नंदन है, न अखिल देही नाम अंतरात्म दी
अंतरात्म,
न को घर में लगा दो, आप अखिल देहियों के जीवा क्या है, आप निश्चित रूप से जसोदा के, जब जसोदा के पुत्र हैं तो आप इतने निष्ठु कैसे हो गए, हम लोग को छोड़ करके जसोदा जी में कितना स्नेह है, इसलिए मालूम होता है कि आप जसोदा के पुत्र नहीं है, ये उसमें भी विरह में कह रहे हैं दुख मालूम होता है कि आप निष्ठुर हैं, जैसे कि देह में अंतरात्मा में जो ईश्वर होते हैं परमात्मा बड़ा भारी निष्ठुर होता है, कोई मर जाए तभी साक्षी, कोई आनंद में डूब रहा है तभी साक्षी, उनको कोई मतलब नहीं है। एक जज है कोर्ट में, कोई एक आदमी सचमुच में वो दोषी नहीं है किंतु परिस्थितियां ऐसी कर रही हैं, गवाह साक्षी रुपया पैसा इधर उधर से जो उसको दोषी साबित कर रहा है, वो जानते हैं कि ये दोषी नहीं है तो भी विवश है कुछ कर नहीं सकते। तो ये जज के पद पर बैठे हुए परमात्मा है, इसलिए लोगों के सुख दुख से कुछ लेना नहीं है, न निष्ठुरता न कुछ, जड़ की भांति यहाँ पर देख रहे हैं बस जानना आप ही ऐसे ही हैं। हम लोग का दुख आप तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए आप जसोदा के पुत्र नहीं है, आप परमा, ये भी दोष लांछन लगा रही हैं उन पर। वहां पर भी ऐसे जहां जहां भगवत्ता देखो, जैसे कि नंद बाबा ने कहा, तुम जैसे करे ये भगवान है तो इनके चरणों में हमारी प्रीति लगे, जन्म जन्मांतर में भी हमारा मन सब समय इन्हीं में लगे, इनके चरण कमल में लगे। ये सब चीजें खाई नहीं है। ये वो श्रीमती राधिका जी और सखियां विशेष करके कृष्ण को भगवान नहीं जानते, वो क्या जानती हैं, अपना प्रेष्ठ प्रियतम, श्रेष्ठ नहीं, अपने से श्रेष्ठ नहीं, प्रियतम जानती हैं, उनके आज्ञावाही समझती हैं, जो हमारी आज्ञावाही है ये। ये हमारे हैं, कोई समझती है कि ये मेरे हैं और कोई समझती है कि मैं इनकी हूं, बस इतना ही। गोपियां कहती हैं कि ये हमारे जीवितेश्वर हैं, जगदीश्वर नहीं है, जगदीश्वर से कोई संबंध नहीं, क्या इनके दिखे बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे। ये दूसरों की कही हुई बातें हैं, उधार ली हुई, अपनी है, अपनी होता तो स्थाई रहता, उधार ली हुई बातें कब तक रहती हैं, जब तक कि उसको हम नहीं दे देते, आ रहा है समझ में। तो उधार ली हुई बातें हमको जब ऋण चुका देंगे तब फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी जरूरत कब तक है, जब तक हमारे ऊपर में ऋण है उनकी। गर्गाचार्य पूर्णमासी और नंदी मुखी इत्यादि के मुख से सुने हैं, कृष्ण मनुष्य नहीं, ये ईश्वर है, जगत ईश्वर है। गरीब लोग, एक गरीब आदमी, उसकी शादी होने जा रही, उसके पास में कपड़े लत्ते अलंकार नहीं है, तो जब विवाह का दिन आता है तो दूसरों से, पास पड़ोसियों से उधार ले लेते हैं और गहना चढ़ा देते हैं, चढ़ने के बाद में फिर लौट करके जब बहू आती है तो उनका गहना लेकर के जिनका है उनको दे देते हैं। जानते हैं ऐसा होता है क्या? सब जगह ऐसा, गांव में, अब शहर में नहीं, अब मैं जानता किंतु ऐसा मैया, तो मैया दे देती है और बड़ी बहू को कहती है कि बड़ी बहू अपना गहना दे दे अभी, आज जब भी शादी हो जाएगी तो फिर आएगी तो फिर तुमको लौटा दूंगा, अपने बड़े भाइयों से और दूसरों से ये सब ले ले। मान लिया कि कभी किसी को अपनी ससुराल जानी है और अच्छा कपड़ा नहीं हुआ, देखा जी हमारे मित्र के पास में कोई अच्छा सा भड़कीला कपड़ा है, दे दो, मैं कल जा रहा हूँ अपनी ससुराल, वहां से आऊंगा तुमको दे। विशेष करके बंगाली लोगों को घड़ी और ये साल बहुत प्रिय होती है, गर्मी दिनों में साल गिरवी रख देते हैं, घड़ी ले लेते हैं, और जबकि ठंड के दिन होता है ना, ठंड का दिन अभी, तो घड़ी को गिरवी दे करके एक साल ले लेंगे। हमने सुना है अब बात, अब ठीक है कि नहीं, मैं नहीं, ऐसा आदमी करते हैं तो अनुष्ठान होने पर फिर हम इसे लौटा देते हैं। ये विशेष करके गरीब जगहों में, गांव में अधिक होता है, शहरों में ये नहीं होता है। ये उधार लिया है, उधार कौन दिया? गर्गाचार्य जी, पूर्णमासी जी, नंदी मुखी, उधार दिया किन को? गोपियों। कब के लिए? जब विरह में तड़प रही हैं उस समय के लिए उधार दिया। इनकी अपनी संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति दूसरी की है। अपनी संपत्ति क्या है? कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारे बंधु हैं, बस इतना है, ये उनकी अपनी संपत्ति। अब वो काम जब खत्म हो गया, मैंने विरह जब दूर हो गया तो क्या होगा? भैया ये चीज तुम्हारी थी, ये तुम ले जाओ, इसलिए उनको लौटा दिया, फिर जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही इस सब चीजों को सामंजस्य करना चाहिए। कृष्ण से मिलने से के समय में वह वस्तु जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत होती है तो उधार ले लिया। अब विरह में इनकी जरूरत हुई, कृष्ण को कुछ कटु कथाएं सुनानी है, इसलिए उस समय मैं कहती अच्छा आप भगवान हैं, इसीलिए तो आप कर्मदर्शी हैं, आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं है, निष्ठुर हो जाते हैं आप, इसलिए उस समय की बात। और इस श्लोक में सदलमस्ती तसखई दुष्टजत तत्कथा, इस श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो वो भगवान है, इनको चिढ़ है केवल अर्थित काले वस्तुओं से, इसलिए कृष्ण के ऊपर में ये कह रहे हैं ये भगवत्ता का नहीं। एक कृष्ण तुम, तुम्हारा अंतर बाहर काला, और एक काला था राम को हमने सुना है वो भी अंतर बाहर काला निष्ठु, और तीसरा था वो भी ऐसा काला, वो भी काला उसका बाहर निष्ठुर इत्यादि, और चौथा का उपमा दे दिया कौवे से। कोई जरूरी चाणक्य भी काला था, वो वहाँ का पुरी में एक था जो
अच्छा
पंडित महाकाला, वो भी ऐसा क्या नाम था महाकाला, किंतु ऐसा ही वो धड़ीबाज भी था जैसा जैसा है। इसलिए श्याम नाम के वस्तुओं में ही ऐसा है, इसलिए इनसे हमारा क्या प्रयोजन है, कोई भी प्रयोजन नहीं। इसलिए ये श्याम रंगों की कुटिलता देख करके ही श्रीमती जी ने ये सब कहा, और वो भी स्थाई भाव में नहीं, बस थोड़े समय के लिए, जब वो खत्म हो गया उसे कोई मतलब नहीं। अब उन्होंने कहा, भ्रमर ने जरा सिर को हिलाया, ऐसे ऐसे किया, और कर करके थोड़ा सा इधर उधर घूम करके कहता जी सामनी जी, यदि इतने ही वो खोटे हैं, निष्ठुर हैं, धूर्त हैं, और जैसा आप कह रही हैं लांछन लगा रही हैं, तो फिर उनकी बातों से क्या आपको जरूरत, आप छोड़ दीजिए भूल जाइए। तो वो कह रहे हैं दुस्तज तक कथा, माने उनको तो भूल सकती हैं, उनकी कथाओं को नहीं भूल, संग हम भूल सकती हैं किंतु प्रसंग नहीं भूलेंगे, संग माने उनका साक्षात, किंतु प्रसंग हम नहीं भूल सकती, प्रसंग माने उनकी जो बातें, ये अपने बस की बात नहीं है, किसी चीज को स्मरण करना भूल जाना ये अपने बस की बात है, ये संभव नहीं। क्यों, मन ये मत, मन इतना तेज है, वायु सा वायु को कंट्रोल कर किया जा सकता है, यहाँ पर वायु मैंने क्या बतलाया, वायु को पकड़ना नहीं, प्राण वायु, अभी थोड़ा सा देखो तो श्वास रोको, एक दो गिनो कितना गिन सकता है, साठ तक गिनेगा तो एक मिनट, एक सांस में सात सात गिनो तो देखो जो प्राण धारण कर लेगा, दो मिनट करो, तीन मिनट, चार मिनट, इसके बाद में नाक और मुख दोनों बंद कर दो, फिर क्या होगा, छटपट छटपट करने लगा, ये दो मिनट में चाहिए स्थिति प्राण वायु को। तो वायु ये जो प्राण वायु है या ये वायु है वही वायु तो है, एक सेकंड में व्याकुल कर देगी, बड़ा भारी कठिन है, तो तुम मन को क्या कंट्रोल करोगे, उससे भी कोटि गुनी है अधिक, मन को इसमें से निकालो ये संभव नहीं। इसलिए कह रहे हैं दुस्तज, दुस्तज है, कठिन है, योगियों के लिए भी कठिन है, ये गोपियों के लिए सहज साध्य है, ये इनको भूलना चाहती हैं, और मन कहाँ जाता है, वो कृष्ण में घूम फिर करके उनके प्रसंग में चला जाता है, कृष्ण नहीं रहने पर, उसी के लिए कृष्ण पर ये दोष दे रही हैं। ये हमारा दोष नहीं है, ये दोष किसका है? उसी काले का ही दोष। उसका संग जैसा है प्रसंग भी वैसा ही, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। दुख त्यज कठिन है। जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत सकत ददन विभूत दंड धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दिनम सृज्य दीन बाबा विहंगा भिक्षु चर्चा। कहते हैं अरे भ्रमर, बुद्धि से बात कर। बुद्धि तुमको नहीं आने सटपद है, और उनका भी अधिक दिन संग नहीं किया। वो थोड़ा जो तुमको सिखला दिया है कि कैसे स्तुति करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए मीठी, किसी को भुलाना है तो कैसी बातें उसकी प्रशंसा की जाए, ये तो थोड़ा सा सिखाया, और तो तुमको कुछ सिखाया नहीं। इसलिए कह रहे हैं जब अनुचरित लीला, कैसे भूल जाए हम उसको एक बार भी। सकद पहला दूसरा श्लोक अधर सुधार संग मोहिनी एक बार, केवल एक बार पिला। हम जीवन भर नहीं भूल सकती, उसका ऐसा लग जाता है चस्का, हम भूल नहीं सकते। फिर एक बार जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत सकद सकृत मन के एक बार भी। जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत एक बार भी थोड़ी सी भी ईशत उनकी लीला कथाएं, उनका चरित्र, उनकी कोई कथा कानों में यदि किसी प्रकार से एक बूंद भी, आधी बूंद भी यदि चली गई तो क्या होगा? विधूत दंड धर्मा विनष्टा, उसका दंड धर्म सदा के लिए। दंड धर्म से जाना अच्छा है, दंड धर्म में नहीं यहां कह रहे हैं स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, ये द्वंद्व धर्म। बेटा बाप, बाप बेटा, यदि ये सुन लिया, बेटे ने सुन लिया तो पिताजी को भूल जाएगा, और पिताजी ने सुन लिया तो बेटा मर रहा है उसको छोड़ करके चले गए। चैतन्य महाप्रभु के कानों में ईश्वरपुरी ने थोड़ा सा ढाल दिया और वो एकदम बदल गए, अब वो निमाई नहीं रहे, और घर में आकर के मैया रो रही है, बहू अभी नहीं है, लड़का नहीं, खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं, सबको छोड़ करके कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इनकी रुलाई नहीं देख रहे, दिन रात रो रहे हैं, मैया को रुला रहे हैं, स्त्री को रुला रहे हैं, आधी रात में सबको छोड़ करके रोते रोते गंगा में कूद पड़े। जाड़े के दिन माघ के महीने में छुटती हुई ठंड, और चले गए मस्तन मुड़ा करके सन्यासी। गुरु नहीं दे रहा मन जबरदस्त, समाज के लोग नहीं दिला रहे, और सबको छोड़ करके कैसा निष्ठुर, घर की कभी याद नहीं की, ऐसा निष्ठुर एक बार कान में पड़े। इसी तरह से सकत दन विधूत दंड धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम, उसी प्रकार से भाई 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 को भी भूल जाता है, बहन को भूल जाता है, जहां प्रेम का आधार है वो सबको भूल करके अपने आप रोता है और दूसरों को भी रुलाता, अपने भी रो करके शांति होती तो नहीं, घर वाले भी रोते हैं, और यहां आकर के सुखी हो गया वृंदावन में नहीं, यहां पर भी रोता है। सपति गृह कुटुंबम दिनम सृज्य दीना, तीन है वो, अपने भी दिन बन गया, हम सबको सदा के लिए छोड़ दिया, एक बार भी नहीं देखा कि मैया कैसी है, बाप कैसा है, वृद्ध हमारी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई भी बाबा भी हम वह विहंगा बाबा, एक दो नहीं, जिनके कानों में एक बार भी गया है उसका जीवन भी ऐसा बदल गया, ऐसा वो निष्ठुर है जैसा उसका संग निष्ठुर है, उसका प्रसंग भी वैसे ही, उसकी बातें भी वैसे ही निष्ठुर है, उसको ऐसा हमारे साथ नहीं यही हुआ, हम कहीं की नहीं रहे, घर की नहीं रही, बाहर की नहीं रही, अपनों की नहीं रही, हमारी ऐसी ऐसे ही विहंगम, विहंगम माने पक्षी, कारण पक्षी में भी इसको समझो हंस होता है ना, हंस भी पक्षी है ना, उसमें भी परमहंस होता है, राजहंस। यहाँ पर हंस मैंने क्या,
मीर को जो
अलग कर देता है। परमहंस कौन, परमहंस कौन होता है,
राजहंस
और कुटी चाक, बहुत चाक, ये चार स्थिति है ना। तो इसमें परमहंस कुटी चक वाला दूर हो गया। कुटी चक माने क्या, कुटी निर्माण करके रहते हैं। हम लोग कैसे हैं, हम लोग हंस कौन से हैं, रंगे रंगाए हैं, रंगे रंगाए हैं। घर की याद आती है, मैया की याद आती है, महाराज मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं जहाँ था वहीं जाऊंगा। आपका नाम क्या है, मेरा नाम अमुक ब्रह्मचारी, परमहंस ब्रह्मचारी। घर की याद आ रही है, वहाँ वहाँ जहाँ था वहीं थी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वृंदावन में नहीं रहेगा, तो नहीं नहीं वृंदावन में नहीं। अरे साधुओं के साथ में कुछ हरी कथा, नहीं मैं नहीं रहूंगा, मैं वहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ पर आदमी साथ मैदान में क्या करते हैं, सवेरे भोर में, और सुअर क्या करती है, उसमें हमको आनंद है। जहाँ पर साधु संत न रहे, कोई हरि कथा न मिले, वृंदावन धाम न रहे, सहजी रूप में तुलसी गंगा जमुना इत्यादि का, वो अच्छा नहीं। हम तो वहीं पर जाएंगे, कुटी चक को छोड़ करके, कुटी को छोड़ करके, केवल कुटी जहाँ पर पहले बना दिया बस वही रखे, भजन करते।